ज़ायनिज्म और नाज़ीवाद शाब्दिक रूप से एक ही सिक्के के दो पहलू। सितंबर 1934 में जोसेफ गोबल्स के प्रचार अखबार डेर एंग्रिफ द अटैक ने एक विशेष लेख प्रकाशित किया, एसएस अधिकारी लियोपोल्ड वॉन मिल्लेनश्टाइन द्वारा लिखित 12 भागों में एक यात्रा वृत्तांत, जिसमें उन्होंने ज़ायनिस्ट अधिकारी कर्ट टुकलर के साथ फिलिस्तीन की अपनी यात्रा का वर्णन किया। इस श्रृंखला को प्रचारित करने के लिए गोबल्स ने नूर्नबर्ग में एक कांस्य स्मारक पदक बनवाया। एक तरफ डेविड का तारा था जिस पर लिखा था नाजी फेट नाच पोलेस्टिना, एक नाजी फिलिस्तीन की यात्रा करता है, और दूसरी तरफ स्वास्तिक के साथ वाक्यांश उन्डो एसएल दावोई मैंग्रिफ और इसके बारे में डेयर एंग्रिफ में बताता है। यह पदक एक क्षणिक लेकिन आश्चर्यजनक वास्तविकता को दर्शाता है। नाजी अधिकारियों और ज़ायनिस्ट नेताओं में यहूदी प्रवास को फिलिस्तीन की ओर बढ़ावा देने में साझा रुचि थी। नाजी जर्मनी को यूडनराइन यहूदियों से मुक्त चाहते थे, ज़ायनिस्ट अपने भविष्य के राज्य को आबाद करना चाहते थे। उनका सहयोग व्यावहारिक और अवसरवादी 1930 के दशक में फला फूला। संदर्भ यूरोपीय राष्ट्रवाद और यहूदी बहिष्कार। 19वीं सदी में जातीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यह विश्वास कि प्रत्येक लोग जातीयता भाषा और रक्त द्वारा परिभाषित को अपने स्वयं के राज्य में रहना चाहिए। यह इटली और जर्मनी के एकीकरण और ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन साम्राज्यों में राष्ट्रवादी विद्रोहों के लिए वैचारिक ईंधन था। इस नई व्यवस्था के तहत अल्पसंख्यक समूहों को कष्ट झेलना पड़ा। रोमा जिप्सी को निष्कासित किया गया, रूढ़ियों में बांधा गया और बाद में नाजियों के तहत विनाश के लिए लक्षित किया गया। पोल्स को प्रशा में जर्मनीकरण और ज़ार साम्राज्य में रूसीकरण द्वारा कुचल दिया गया। चेक स्लोवा यूक्रेनियन दक्षिणी स्लाव को ऑस्ट्रिया हंगरी में दबाया गया। आर्मेनियाई को ऑटोमन साम्राज्य में नरसंहार और जनसंहार का शिकार बनाया गया। बास्क कैटलन ब्रिटेन कोर्सिकन को स्पेन और फ्रांस में दबाया गया। सोड्स डेन फिन्स बाल्स को प्रशा या रूसी शासन के तहत आत्मसात या दबाया गया। इनमें से अधिकांश समूहों ने अधिकारों या स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करके जवाब दिया। इसके विपरीत ज़ायनिस्ट ने तर्क दिया कि यहूदी उत्पीड़न का समाधान यूरोप के भीतर समानता नहीं बल्कि फिलिस्तीन का उपनिवेशीकरण था। ज़ायनिस्ट के लिए पूर्व शर्त के रूप में यहूदी विरोध। यहूदी विरोध नाजियों से बहुत पहले व्यापक था। जर्मनी विल्हेल्म मार ने 1870 के दशक में यहूदी विरोध शब्द गढ़ा। फ्रांस ड्रेफस मामले ने गहरे यहूदी विरोध को उजागर किया। रूस पोग्रोम्स 1881-1905 ने लाखों लोगों को निर्वासन में भेजा। ऑस्ट्रिया वियना के मेयर कार्ल ल्यूगर ने यहूदी विरोध पर अपनी करियर बनाया। हंगरी रोमानिया पोलैंड रक्त अपवाद कोटा पोग्रोम्स। ज़ायनिस्टों ने यहूदी विरोध को इस बात की पुष्टि के रूप में व्याख्या किया कि यहूदी यूरोप से संबंधित नहीं है। हर्जल के डेर यूडेंस्टॉट 1896 ने निष्कर्ष निकाला, यहूदी विरोध कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए यहूदियों को अपने स्वयं के राज्य की आवश्यकता है। ज़ायनिस्ट नाजी अभिसरण 1933 का ज्ञापन। 21 जून 1933 को जर्मनी की ज़ायनिस्ट फेडरेशन ZVFT ने एडोल्फ हिटलर को एक ज्ञापन भेजा। इसमें घोषणा की गई, नए राज्य के आधार पर जिसने नस्ल के सिद्धांत को स्थापित किया है, हम अपने समुदाय को समग्र संरचना में इस तरह समायोजित करना चाहते हैं कि हमारे लिए भी हमें आवंटित क्षेत्र में मातृभूमि के लिए फलदायी गतिविधि संभव हो, क्योंकि हम भी मिश्रित विवाहों के खिलाफ हैं और यहूदी समूह की शुद्धता को बनाए रखने के पक्ष में हैं। हवारा समझौता 1933-1939। 25 अगस्त 1933 को नाजी जर्मनी और यहूदी एजेंसी ने हवारा स्थानांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तंत्र जर्मन यहूदी जर्मन बैंकों में अपनी संपत्ति जमा करते थे। इस पैसे का उपयोग जर्मन सामानों को खरीदने के लिए किया जाता था जो फिलिस्तीन को निर्यात किए जाते थे। प्रवासी फिलिस्तीन में स्थानीय मुद्रा में आय प्राप्त करते थे। परिणाम हवारा के तहत लगभग 60,000 जर्मन यहूदी फिलिस्तीन में प्रवास कर गए। प्रभाव जर्मन निर्यात और ज़ायनिस्ट विकास को बढ़ावा दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यहूदी बहिष्कार को कमजोर किया। डेर एंग्रिफ और मिल्डेनश्टाइन टुकलर यात्रा। वसंत 1933 में कर्ट टुकलर एक ज़ायनिस्ट अधिकारी ने नाजी मीडिया कवरेज के माध्यम से प्रवास को बढ़ावा देने के लिए एसएस अधिकारी लियोपोल्ड वॉन मिल्डेनश्टाइन से संपर्क किया। मिल्डेनश्टाइन और उनकी पत्नी ने टुकलरों के साथ फिलिस्तीन की यात्रा की, जिसमें तेल अवीव किबुत्स जेज़रील घाटी साफेद हेब्रोन और यरूशलम का दौरा किया। इस यात्रा ने आइन नाजी फेट नाच पोलेस्टिना एक नाजी फिलिस्तीन की यात्रा करता है श्रृंखला का निर्माण किया, जो 26 सितंबर से 9 अक्टूबर 1934 तक डेर एंग्रिफ में प्रकाशित हुई। आइन नाजी फेट नाच पोलेस्टिना 1934। एक नाजी फिलिस्तीन की यात्रा करता है और डेयर एंग्रिफ में इसके बारे में बताता है। प्रत्येक अंश में ज़ायनिस्ट बस्तियों और अग्रदूतों की तस्वीरें शामिल थीं। नीचे चयनित अंश दिए गए हैं। भाग 1, आउफ्ब्रुक नाच एरेस इसराइल, 26 सितंबर 1934। बर्लिन स्टेशन पर यहूदी युवा ट्रेन में चढ़े। वे हिब्रू गाने गा रहे थे, उनकी आवाज़ें आशावाद से भरी थीं। उन्होंने अपनी विदाई चिल्लाई, शालोम, यह एक ऐसे लोगों की पुकार थी जो फिर से निर्माण करने के लिए निकल रहे थे। भाग 2, ऑनकॉन्फ्रिन हाइफा, 27 सितंबर 1934। हैफा के बंदरगाह में अरब कुली चिल्लाते हुए और लालची हाथों से सामान छीनते हुए भीड़ में थे। इसके विपरीत, आप्रवासन कार्यालय के यहूदी अधिकारियों ने हमें व्यवस्था और अनुशासन के साथ स्वागत किया। उनके दस्तावेज सावधानीपूर्वक तैयार किए गए थे। भाग 3, टेल अवीव, डाई यूडिशा स्टैट, 28 सितंबर 1934। यहाँ केवल यहूदी रहते हैं, यहाँ केवल यहूदी काम करते हैं, यहाँ केवल यहूदी व्यापार करते हैं, नहाते हैं और नाचते हैं। शहर की भाषा हिब्रू है, एक प्राचीन भाषा जिसे पुनर्जनन किया गया है। फिर भी शहर स्वयं आधुनिक और पश्चिमी है, जिसमें चौड़ी सड़कें और आकर्षक दुकानें हैं। हर जगह निर्माण बढ़ रहा है ताकि बढ़ती आबादी को समायोजित किया जा सके। फिलिस्तीन में यहूदियों की विशाल बहुसंख्यक आशावादी, मेहनती, आदर्शवादी लोग हैं जो अपनी मेहनत से भूमि का निर्माण करने का इरादा रखते हैं। यह उस रूढ़ी के बिल्कुल विपरीत है जो आमतौर पर यहूदियों पर लागू होती है। भाग 4, डाई किब्बुज़म उंडुडास लैंड, 29 सितंबर 1934। किबुत्स में हर हाथ काम करता है, पुरुष, महिलाएं और बच्चे समान रूप से। दलदली भूमि को सूखा जाता है, बाग लगाए जाते हैं, खलिहान बनाए जाते हैं। यहाँ एक नए प्रकार का यहूदी जन्म लेता है, मिट्टी में जड़ें जमाए, प्रकृति के करीब। भाग 5, बेन शीमेन उंडुडा युगिन, 30 सितंबर 1934। बेन शीमेन की युवा कॉलोनी में युवा अग्रदूतों को न केवल पढ़ाई में बल्कि काम में भी प्रशिक्षित किया जाता है। वे जमीन जोतते हैं, पशुओं की देखभाल करते हैं और अनुशासन के साथ मार्च करते हैं। उनकी आंखों में भविष्य की आत्मा चमकती है। भाग 6, डाई जेज़रील ईबे, 1 अक्टूबर 1934। जेज़रील घाटी में मैं बेन कुरियन से मिला, बस्ती वालों में एक नेता। हमारे आसपास जो कभी दलदल और जंगल था, वह उपजाऊ खेत में बदल गया है। यहाँ के बसने वाले सामुदायिक रूप से रहते हैं, सब कुछ साझा करते हैं, इस विश्वास के साथ कि वे एक नया राष्ट्र बना रहे हैं। भाग 7, आबशा डुफ्टा, 2 अक्टूबर 1934। कुछ बुजुर्ग महिलाएं मेरे सामने बैठी हैं। बहुत बूढ़ी महिलाएं अब घूंघट नहीं पहनती, हालांकि आप चाहेंगी कि वे पहनें, और ये गंदे बच्चे बस दयनीय रूप से हिल रही है। एक छोटी लड़की को मोशन सिकनेस हो जाती है। अरबी गंध पहले से ही हमें घेरे हुए थी, लेकिन अब यह असहनीय हो गया है। हम भी अपने सिर खिड़की से बाहर निकालते हैं। भाग 8, सफ़ैद उंडू डेयर नॉर्डन, 3 अक्टूबर 1934। सफ़ैद में माहौल तनावपूर्ण है। अरब ब्रिटिश के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, अपनी मुट्ठियां हिलाते और चिल्लाते हैं। यहूदी अपने छोटे क्वार्टर में पहरेदार दरवाजों के पीछे रहते हैं। यहां स्पष्ट रूप से दिखता है, अरब प्रगति का विरोध करता है। भाग 9, हीब्रोन उंडुडाई फोरगैंगन हाइट, 4 अक्टूबर 1934। हम हीब्रोन के जले हुए यहूदी क्वार्टर से गुजरे। खंडहर 1929 के खूनी दिनों की याद दिलाते थे, जब अरब भीड़ ने अपने पड़ोसियों पर हमला किया। आग से काले पत्थर, खाली घर, वहां चुप्पी जहां कभी यहूदी जीवन फला फूला था। भाग 10, जेरूसलम उंडुडाय हाइलियनश्टेटन, 5 अक्टूबर 1934। विलाप की दीवार पर यहूदी अपनी प्रार्थनाएं बुदबुदा रहे थे। अरब पास से गुजरे और मजाक उड़ाया, चिल्लाए और ताना मारा, उनकी भक्ति को परेशान किया। शाम को मैं यरूशलम में यहूदी लेखों की सभा में शामिल हुआ, एक सलून जो बातचीत से भरा था, जहां पुरानी परंपरा युवा नवीकरण से मिली। भाग 11, डाई सुकुन्फ तेस लैंडिस, 6 अक्टूबर 1934। फिलिस्तीन में और हजारों को समायोजित करने की क्षमता है। पहले से प्राप्त प्रगति दिखाती है कि जब आदर्शवाद और कार्य एकजुट होते हैं तो क्या हो सकता है। लेकिन ब्रिटिश हिचकिचाते हैं, दंगों से डरते हैं और अरब बेचैन हो रहे हैं। भाग 12, आइना लर्जुंग डेर यूडनफ्रॉगा, 9 अक्टूबर 1934। फिलिस्तीन में यहूदी प्रश्न का समाधान मिलता है। यहाँ यहूदी उत्पादक, रचनात्मक, भूमि से जुड़ा हुआ बनता है। वह समस्या जो यूरोप पर बोझ डालती है, इरेट्स इसराइल की मिट्टी में उपचार पाती है। मिल्डेनश्टाइन से आइकमन तक। 1935 तक एडॉल्फ आइकमन मिल्डेनश्टाइन के विभाग में शामिल हो गए। उन्होंने हर्जल के डेयर यूडेंस्टॉट का अध्ययन किया, हिब्रू और यिदिश सीखा और खुद को जायनिस्ट बताया, विश्वास से नहीं बल्कि यहूदी समस्या के समाधान के रूप में प्रवास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में। एवियन, प्रवास की विफलता और कट्टरपंथ। जुलाई 1938 में एवियन सम्मेलन ने यहूदी शरणार्थियों पर चर्चा करने के लिए 32 देशों को एकत्र किया। अधिकांश ने आप्रवासन कोटा बढ़ाने से इनकार कर दिया। केवल डोमिनिकन गणराज्य ने 1,00,000 के लिए भूमि की पेशकश की, हालांकि केवल कुछ 100 को बसाया गया। नाजी प्रचार ने खुशी मनाई, यहूदी बिक्री के लिए कोई नहीं चाहता। ज़ायनिस्ट प्रतिनिधियों ने केवल फिलिस्तीन पर ध्यान केंद्रित किया, अन्य गंतव्यों को अस्वीकार कर दिया। प्रवास की विफलता ने नाजियों के निष्कासन से विनाश की ओर बदलाव में योगदान दिया। आइकमन हगाना संपर्क। 1937 में हगाना एजेंट फीवेल पोल्स ने आइकमन और हर्बर्ट हेगन से मुलाकात की। पोल्स ने ब्रिटिश के खिलाफ हथियार और नाजी सहायता की मांग की, ब्रिटेन को साझा दुश्मन के रूप में प्रस्तुत किया। आइकमन और हेगन ने नकली पहचान के तहत फिलिस्तीन की यात्रा की, ब्रिटिश द्वारा निष्कासित किए गए और काहिरा में फिर से पोल्स से मिले। कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन यह प्रकरण दोनों पक्षों की व्यावहारिकता और हताशा को दर्शाता है। अतीत की परछाइयां। नरसंहार से पहले नाजी नीति में शामिल थे व्यवस्थित वंचन, यहूदी संपत्ति का आर्यनकरण, नागरिकता का नुकसान, नूर्नबर्ग कानून, दोहरे कानूनी सिस्टम, यहूदी बनाम आर्यन, मनमानी हिरासत, प्रारंभिक शिविर। पर्यवेक्षक आज इसराइल फिलिस्तीन में संरचनात्मक समानताएं नोट करते हैं, भूमि की जब्ती, नागरिकता से वंचित करना, बसने वालों और फिलिस्तीनियों के लिए अलग अलग कानूनी सिस्टम और प्रशासनिक हिरासत। निष्कर्ष, नस्लीय राष्ट्रवाद के दो चेहरे। ज़ायनिस्म और नाजीवाद, हालांकि परिणाम में विपरीत थे, ने एक सामान्य ढांचा साझा किया। दोनों जातीय राष्ट्रवादी परियोजनाएं थीं जो आत्मसात को अस्वीकार करती थीं, अलगाव को महिमामंडित करती थीं और पहचान को जैविक रूप से परिभाषित करती थीं। डेयर एंग्रिफ का पदक अपने स्वास्तिक और डेविड के तारे के साथ एक संग्रहकर्ता की जिज्ञासा से अधिक है। यह एक अनुस्मारक है कि यूरोपीय यहूदी विरोध यूरोप में हल नहीं हुआ, बल्कि फिलिस्तीन में निर्यात किया गया, जहां फिलिस्तीनी दो नस्लीय राष्ट्रवादी विचारधाराओं द्वारा तैयार किए गए समाधान के शिकार बन गए। संदर्भ: डेयर एंग्रिफ, बर्लिन, अंक 226-237, 26 सितंबर-9 अक्टूबर 1934। जर्मनी की ज़ायनिस्ट फेडरेशन का एडॉल्फ हिटलर को ज्ञापन, 21 जून 1933। हवारा समझौता, 25 अगस्त 1933। एवियन सम्मेलन के रिकॉर्ड, जुलाई 1938। आइकमन का गवाही, यरूशलम ट्रायल, 1961। बोआस, जैकब। एक नाजी फिलिस्तीन की यात्रा करता है और डेयर एंग्रिफ में इसके बारे में बताता है। हिस्ट्री टुडे, 1980। ब्रेनर, लेनी। दिक्तातोरों के युग में ज़ायनिज्म। लंदन, क्रूमहेल्म, 1983। ब्लैक, एडविन। स्थानांतरण समझौता, तीसरे रीच और यहूदी फिलिस्तीन के बीच समझौते की नाटकीय कहानी। न्यूयॉर्क, मैकमिलन, 1984। निकोसिया, फ्रांसिस। तीसरा रीच और फिलिस्तीन प्रश्न। ऑस्टिन, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास प्रेस, 1985। सेचेव, टॉम। सातवां मिलियन, इसराइल और हॉलोकॉस्ट। न्यूयॉर्क, हिल एंड वैंग, 1991। सेसा रानी, डेविड। आइकमन, उसका जीवन और अपराध। लंदन, हाइनमन, 2004। लकवेर, वॉल्टर। ज़ायनिस्म का इतिहास। लंदन, टॉरिस, 2003, मूल 1972। लॉन्गेरिच, पीटर। हॉलोकॉस्ट, नाजी उत्पीड़न और यहूदियों की हत्या। ऑक्सफोर्ड, ऊप, 2010।